आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। विक्टोरिया में एक व्यक्ति अपने घर पर पाए गए कोरोना संक्रमित। भारत में भारतीय रेलवे ने कोरोना से खोए 1952 कर्मचारी और ऑस्ट्रेलियाई बास्केटबॉल खिलाड़ी ने वापस ली ओलंपिक में ना खेलने की धमकी। और अब समाचार विस्तार से। विक्टोरिया में एक करीब 30 वर्ष के व्यक्ति को उनके घर पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति विदेश से साउथ ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा संगरोध कर घर लौटे थे। बताया जा रहा है कि मेलबर्न में के उत्तर में स्थित वॉलर्ट से 4 मई को लौटने के बाद 8 मई को इन्हें कोरोना के पहले लक्षण दिखे और 10 मई को इन्होंने कोरोना की जांच कराई। अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ घर पर ही संगरोध कर रहे हैं। इनके परिवारजनों से पूछताछ और जांच चल रही है। अधिकारी एक्सपोजर साइट्स की पूरी जानकारी प्राप्त होते ही एक नई लिस्ट जारी करेंगे। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉर्ज फ्राइडनबर्ग का कहना है कि उनका दूसरा महामारी संबंधी बजट ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सुधार को सुरक्षित करेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 से ऑस्ट्रेलिया की रिकवरी को बढ़ावा देने के प्रयास में फेडरल सरकार 2021-22 के बजट में कई आर्थिक प्रावधान लाएगी। ये बजट बेरोजगारी की दर को 5% से कम करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के अलावा नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम NDIS भी फेडरल बजट का एक प्रमुख केंद्र होगा। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि NDIS को भुलाया नहीं जा सकता।
This is a wonderful program. It's made a profound change to the lives of Australians with disabilities and their families. We all know stories of people who have been assisted by the NDIS. And under the coalition, the NDIS will always be fully funded. We need to ensure it continues to remain sustainable. But under the coalition, we are deeply committed to the NDIS and we'll always ensure that it's fully funded.
फेडरल विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके इस बजट को महिला केंद्रित रखने की वजह राजनैतिक है। आज शाम पेश होने वाले बजट में महिला सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कई घोषणाएं की जाएंगी। हालांकि सरकार का कहना है कि इन घोषणाओं का हाल में संसद में हुई महिलाओं के प्रति हिंसा के विवादों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लेबर की आर्थिक प्रवक्ता केटी गैलेगर इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
Do you honestly think the Morrison government would have had a women's package if it wasn't for the pressure they've been under in the past 3 months? They've been cutting services in domestic violence and family violence and community legal centres, all services that women experiencing violence need. They've been cutting that year on year. And then we've got this magical women's package now, and you tell me the two things aren't linked? Of course they're linked.
ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं को फिर से खोलना आज पेश होने वाले 2021-22 के फेडरल बजट के केंद्र में होना तय माना गया है। कोषाध्यक्ष जॉर्ज फ्राइडनबर्ग ने कहा है कि स्वास्थ्य सलाहकारों के निर्देशों के अनुसार ही कोरोना से पहले के प्रवासी दर को बहाल करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि आज के बजट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा खोलने के बाद की रूपरेखा भी बताई जाएगी। वित्त मंत्री साइमन बर्मिंगम ने 9 नेटवर्क को बताया है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
Australia is doing well and that enables us to invest. And you look across the world, in Europe they're going back into recession, a double dip recession induced by COVID. In India we can see the health catastrophe that's happening there, and so in Australia we want to make sure that we keep people safe, which is why we're being so cautious in things like international borders.
New South Wales में कोई नए कोरोना वायरस संक्रमण के स्थानीय मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि होटल संगरोध में लौटे विदेशी यात्रियों के बीच 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर स्टीफन कॉनिटी का कहना है कि योग्य लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं।
New South Wales Health administered 6,297 vaccines in the 24 hours to 8 p.m. last night. including 2,379 vaccines at the new centre in Sydney Olympic Park. This brings the total number of vaccines administered by New South Wales to 242,149.
Victoria Region Party ki sansad Fiona Patton ne Rajya Sarkar se iltija ki hai ki ve Melbourne mein high drug use ke liye 3 naye safe injecting rooms sthapit karein. Melbourne ke uttar Richmond mein sthit maujooda safe injecting room school ke nazdeek hone ke karan vivadon mein ghir gaya tha. Karyakari Premier James Merlino ka kehna hai ki sarkar ek swatantra jaanch ke baad aane wali salah ke anusaar hi faisla legi.
We've been really clear on our approach. There was a significant independent review of the medically supervised injecting rooms. There was a recommendation that there should be one further safe injecting rooms in the Melbourne CBD, and that is precisely the work that we're doing. Nothing beyond responding to the independent review, which is one further injecting rooms in Melbourne CBD.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें. जर्मनी के 100 से भी अधिक चर्चों ने लव विंस मोटो पर हस्ताक्षर करते हुए समलैंगिक जोड़ों की शादी करवाने की रजामंदी दी है. इस मुहिम में कई पादरी, डीकन और स्वयंसेवी जुड़े हैं. यह मुहिम वैटिकन के समलैंगिक जोड़ों को शादी की मान्यता ना देने के फैसले के विरोध के रूप में शुरू की गई है. और अब खबरें भारत से. कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को अपनी चपेट में लेने लगी है. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना करीब 1,000 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि 1,952 कर्मचारी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि पिछले साल मार्च से कल यानी 10 मई तक 1,952 रेल कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से जान जा चुकी है. बता दें कि रेलवे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं. भारत में महाराष्ट्र की सरकार कोविड-19 की वैक्सीन को सीधे आयात करने की संभावना पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके. यह जानकारी राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने NDTV से बात करते हुए दी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनके पास 3 सप्ताह में पूरी मुंबई में वैक्सीन लगाने का रोड मैप तैयार है. साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत देरी का कोई कारण नहीं है और राज्य सरकार जल्द अज जल्द वैक्सीन खरीदने पर विचार कर रही है. ज्ञात हो कि भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में फैल रहे कोरोना वेरिएंट को संक्रामक बताते हुए इसे चिंता का विषय श्रेणी में वर्गीकृत किया है. WHO ने कहा कि कोविड-19 का B.1.617 वेरिएंट पहली बार भारत में पिछले अक्टूबर में पाया गया था. ये वेरिएंट वायरस के ओरिजिनल वेरिएंट की तुलना में अधिक आसानी से फैल रहा है और संभवतः वैक्सीन के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है. इसी बीच WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि महामारी के इस दौर में पेटेंट और मुनाफों के बजाय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए.
The WHO strongly believes that the TRIPS waiver that was proposed at the WTO by India and South Africa should be done. And the DG, Dr. Tedros, has often spoken about this and the fact that this is the time during a pandemic to not worry about patents and profits, but to really think about how do we increase the access to the tools that people need, whether it's diagnostics or vaccines or drugs. So yes, we would like to see that happen very quickly at the WTO.
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थोड़ी थमती नजर आ रही है. 4 लाख के पार पहुंच चुके रोजाना दर्ज होने वाले संक्रमण के मामले गिरकर 3.29 लाख के आंकड़ों के पास आ गए हैं. हालांकि ये आंकड़े अब भी बहुत भयावह हैं. मंगलवार यानी आज की सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,29,942 नए केस सामने आए हैं और इस अवधि में 3,876 मरीजों की जान चली गई है. भारत देश में पिछले 24 घंटों में 25,03,756 वैक्सीन की डोज दी गई हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.64 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई बास्केटबॉल खिलाड़ी लिज कैम्बेज ने नस्लवाद के विरोध में टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ना लेने की अपनी धमकी को वापस ले लिया है। ओपल्स की स्टार खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक कमेटी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वे प्रमोशन शूट में श्वेत खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रही है। कैम्बेज का मानना था कि अश्वेत खिलाड़ियों को कमेटी ने दरकिनार कर दिया है और इसीलिए वे इस साल के ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं लेना चाहती। पर 29 वर्षीय कैम्बेज ने अब कहा है कि वे अपना तीसरा ओलंपिक खेलेंगी।
I'm going to play with my sisters that I've been playing with since I was a wee little thing and I'm a ball out. For all those young brown kids back in Australia watching me, baby, I'm gonna do it for y'all!
ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति ने माना भी है कि फोटोशूट को लेकर कैम्बेज के आरोपों में कुछ सच्चाई तो है। और अब आखिर में डालते हैं नजर कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल बारिश की संभावना जताई जा रही है। यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल तेज धूप के आसार हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 17 डिग्री जबकि न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल धूप खिली रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बूंदाबांदी के आसार हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल तेज बारिश के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में आंधी के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल धूप ही धूप है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप छांव का मौसम रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।